सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने पूजूंगे सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंदकुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। हम लोग दृष्टि की निर्मलता के साथ आत्मज्ञान पूर्वक अपने जीवन को अनुशासित बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा जीवन अनुशासित हो, इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी शक्ति को विचारें। शक्ति से अधिक यदि हम व्रत नियम का पालन करके अपने जीवन को अनुशासित करते हैं तो वह संक्लेश का ही कारण बनता है। शक्तितस त्याग इसीलिए आचार्यों को लिखना पड़ा कि जब भी हम अपने जीवन में कोई व्रत नियम या अनुशासन ग्रहण करें, हम पहले टटोल कर देख लें, अपने अंतरंग में झांक करके देख लें कि वैसे तो हमारी आत्मा अनंत शक्तिवान है, लेकिन शरीर की शक्ति कितनी है ये आकलन हम अपना अपना स्वयं ही कर सकते हैं। मनुष्य की देह है जिसमें कि संयम धारण करने की सामर्थ्य है। देव पर्याय और नरक में तो देश संयम को भी धारण करने की सामर्थ्य नहीं है। तिरेंचों में देश संयम को धारण करने की सामर्थ्य है, लेकिन एकमात्र मनुष्य पर्याय है जिसमें कि अपने जीवन को पूर्णतः अनुशासित करने के लिए महाव्रतों को अंगीकार किया जा सकता है। ऐसी भावना तो अपनी रखेंगे कि हमें महाव्रत प्राप्त हो, लेकिन हम अपनी शक्ति देख करके, शरीर की क्षमता देख करके व्रत नियम अंगीकार करेंगे ताकि हमारे कर्मों की निर्जरा हो सके। संक्लेश से तो कर्म का बंध ही होगा। इतना ही नहीं, आचार्यों ने यह भी लिखा कि अपनी शक्ति को छिपाना भी नहीं। आचार्य महाराज कहते हैं कि अगर हमारे पास व्रत उपवास करने की सामर्थ्य है तो हम आगे बढ़कर और उसे पूरा करें। हम ऐसा ना सोचें कि हमारी शक्ति ही नहीं है। कहा तो था कि शक्ति तस्त्याग, तो हमारी शक्ति है ही नहीं। ये बेईमानी हो जाएगी अपने साथ। दोनों चीजों के बीच सामंजस्य, अहंकार पूर्वक भी मैं व्रत नियम संयम का पालन न करूं, या व्रत नियम संयम का पालन करके मैं अहंकार न करूं कि मैंने अपने जीवन को बहुत अनुशासित बना लिया, मैं तो संयमी हूं, तुम सब तो असंयमी हो। इस तरह का मिथ्या भाव, अहंकार का भाव मेरे भीतर उत्पन्न ना हो। क्या पता जो आज असंयम में अपना जीवन जी रहा है, कल के दिन हमसे भी आगे निकलकर अपने जीवन में महाव्रतों को अंगीकार करके अपना आत्मकल्याण कर ले। हम अगर अपने जीवन को अनुशासित करते हैं तो हमें इस बात का अहंकार नहीं होना चाहिए, वो तो हमारा नेचर है, हमें तो वैसा करना ही था। अपना कर्तव्य मान करके हम अगर अपने जीवन को अनुशासित करते हैं, अपने जीवन में व्रत नियम और संयम ग्रहण करते हैं, वही व्रत नियम और संयम सार्थक होंगे। दोनों चीजें हो गई, मुझे इतनी अधिक मात्रा में व्रत नियम संयम का पालन करना नहीं है जिससे कि मुझे संक्लेश होने लगे, मेरी सामर्थ्य को विचारूंगा तो ही मैं व्रत नियम का पालन कर पाऊंगा, और साथ में व्रत नियम का पालन करते समय मैं अहंकार न करूं। संक्लेश और अहंकार, इन दोनों से बचकर समता की साधना करने के लिए मैं अपने जीवन को अनुशासित करना चाहता हूं। ऐसा भाव जब हम ग्रहण करें व्रत नियम तो हमारे अंदर होना चाहिए, और व्रत नियम संयम ऐसे ही ग्रहण करने के नहीं है। अपसख्यम, परसख्यम, देवता सख्यम, सबकी साक्षी पूर्वक, स्वयं की साक्षी तो है ही, लेकिन मैंने ये व्रत नियम लिए हैं, मैं अपने परिवारजनों को भी इस बात का इशारा कर दूं कि मेरे व्रत नियमों में तुम सब सहयोग करना। ये बहुत कठिन है कि कोई दूसरे के व्रत नियम में सहयोग करे, क्योंकि उसे चैलेंज लगता है, जैसे कि लोमड़ी के अंगूर खट्टे, ये कहावत प्रसिद्ध है, ऐसे ही दूसरे को व्रत नियम और अनुशासित जीवन जीते देख करके अपने को चुनौती आ जाती है कि जब ये कर सकते हैं तो मैं भी तो कर सकता हूं, और मैं नहीं कर रहा हूं ये तो ठीक नहीं है। इस भाव को छिपाने के लिए क्या करेगा, नहीं कोई खास नहीं कर रहे हैं, देखो तो किसी कषाय करते हैं, भले ही कुआं को पानी पी रहे हैं, ऐसा कमेंट्स करेगा, बल्कि माहौल नहीं बनाएगा उसको कि आपके व्रत नियम अच्छे से पूरे हों और मैं क्या सहयोग कर सकता हूं। मैं सामने वाले को कषाय के लिए प्रेरित ना करूं, अगर उसको कषाय उत्पन्न हो जाए तो उसे शांत करूं, उसे ऐसा माहौल दूं कि जिससे वो निष्कषाय भाव से और अपने व्रत नियमों को पालन कर सके। बहुत कठिनाई होती है आज के समय में व्रत नियमों को पालन करने में, अपने जीवन को अनुशासित तो मर्यादित बनाने में, और दूसरा उसमें सहयोग करें, ये तो बहुत ही मुश्किल है। एक तो स्वयं के भाव बनना बहुत मुश्किल है, और दूसरा उन भावों को समर्थन करें, उनमें सहयोग करें, ये तो और कठिन है। दोहरा दोहरा काम अपने जीवन को अनुशासित करने वाले को आज के इस भीषण पंचम काल में करना पड़ता है, जबकि कोई सहयोग करने वाला नहीं है व्रत नियमों में, बल्कि असंयम के लिए ज्यादा सहयोग करेंगे कि आप क्या मतलब है व्रत नियम लेने से, कुछ नहीं होता व्रत नियम से, ऐसा कहेंगे। आपको एक घटना सुनाऊं, हमेशा याद आ जाती है, उस घटना को सुनकर इस संसार की विचित्रता का एहसास होता है। मैं जब चतुर्मास कर रहा था जयपुर में, वहां पर किसी ने मुझे बताया कि महाराज से और बेटी ने रात्रि भोजन का त्याग ले लिया, और उस बीच में उसका विवाह निश्चित हुआ। जहां जिस परिवार में उसके विवाह की बात चली, वहां उसने स्पष्ट कह दिया कि मैंने तो रात्रि में भोजन का त्याग किया है, जहां मैरिज होना थी उस परिवार में लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा, हम लोग तो वैसे भी तुम्हारा समर्थन ही करेंगे, हम लोग भी रात में नहीं खाएंगे। बेटे ने भी कह दिया जिससे विवाह होना था, मजे की बात। तो सब लोग तैयार हो गए कि भाई बहुत अच्छा है, धार्मिक परिवार है। और उसके बाद आप आश्चर्य करेंगे कि विवाह के सात फेरे होने के बाद रात्रि में ही, और बेटे ने जिद करके अपनी जीवन साथी को रात में खाने के लिए मजबूर किया। हम स्वयं व्रत नियम नहीं पालन कर पाते हैं, लेकिन दूसरा अगर पालन करता है तो उसे भंग करने के लिए तैयार है, उसमें सहयोग करने के लिए तैयार रही। आज ऐसी स्थिति में व्यक्ति को व्रत नियम पालन करना पड़ते हैं, तो जो व्रत नियम अंगीकार करें वो पहले से अपना मन बना लें कि कोई सहयोग नहीं करने वाला, मुझे अपनी दम पर यह सारा काम करना है और अपनी कषायों को जीतना है, मुझे अपने जीवन को अनुशासित बनाना है। तो पब्लिक ओपिनियन की आवश्यकता नहीं है कि कोई मुझे सहयोग करेगा या कि प्रशंसा करेगा, क्रिटिसाइज करने वाले लोग मिलेंगे आपको। आप ये पहले ध्यान रखिए लेने से पहले। और गुरु की आज्ञा पूर्वक, आत्मा की साक्षी पूर्वक तो मन बन गया व्रत नियम लेने का, घर के लोगों को भी अगर भले हैं तो, और पुण्य का उदय होगा तो भले ही लोगों के बीच अपने को रहने मिलेगा, अपना सहयोग करने वाले ही भले हैं धर्म के क्षेत्र में, संसार में नहीं। संसार में तो सहयोग करने वाले स्वार्थ बस करते हैं और कचू नहीं। पुण्य का उदय तो तब कहलाएगा, अच्छा परिवार मिला तब कहलाएगा कि हमारे व्रत नियम संयम में और अनुशासन में बाधक नहीं बनते। मैं जब चतुर्मास कर रहा था झांसी में, तब वहां पर एक मां ने बताया कि हमारा तो सौभाग्य है महाराज, हमारा जहां ब्याह हुआ कम से कम इतना तो है कि हमें मंदिर जाने के लिए मना नहीं करते, बल्कि स्वयं कि देखो मैं तो अपने काम में इतना व्यस्त हूं कि महाराज के प्रवचन में नहीं जा सकता, इतना पुण्य तो मैं कमा लूं कि तुम्हें मैं छोड़ करके आ जाता हूं, तुम गाड़ी से मत आना और बस में बैठकर मत आना, मुझे कहना तुम तीन दफे महाराज के प्रवचन में जाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ करके आऊंगा, इतना पुण्य तो मैं भी कमा लूं, मैं घंटे भर नहीं दे सकता तो पांच मिनट तो देऊं, ऐसा मिलना तो बहुत कठिन है। तीसरे नंबर लिखा है कि देवता सख्यम, सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति विनय पूर्वक, गुरुजनों की आज्ञा पूर्वक हम व्रत नियम संयम धारण करें, ताकि उन व्रत नियम संयम में अगर कोई दोष लग जाए तो उसका निवेदन कर सकें कि भगवान जैसी भगवान की आज्ञा थी, अज्ञानाल दवी व्रतम नियमोनो वर्ति सहम चान्न था, रोज प्रतिक्रमण करना पड़ता है कि हे भगवान अगर आपके जैसी व्रतों की व्याख्या की गई थी, मैंने वैसा व्रतों का पालन ना किया हो तो मुझे क्षमा करना। इतनी विनय पूर्वक, इस अहंकार पूर्वक नहीं कि मैं तो सब अच्छा कर रहा हूं मुझे मैं जानता हूं, नहीं मैं क्या जानता हूं, तीर्थंकर भगवान ने जैसा प्ररूपण किया है व्रतों का मैं वैसा पालन कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, जगह क्षमा मांग लो। इस तरह के भाव से, ऐसी विनय से, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा के भाव से अपन व्रत नियम ग्रहण करें, बिना शास्त्र की विधि के अनुरूप, बिना गुरुओं की आज्ञा के अनुरूप व्रत नियम अगर पालन करते हैं, उसमें कोई त्रुटि हो जाती है, उसमें कोई मुश्किल आती है, तो अपन किससे कहने जाएंगे, कैसे अपने मन को विशुद्ध करेंगे। उस मन की विशुद्धि के लिए, मन की निर्मलता के लिए गुरुजनों को अपन कह करके, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करके अपने जीवन में अनुशासन स्वीकार करते हैं। श्रावक के लिए जैसे कल अपन ने पांच कर्तव्यों की चर्चा की थी, छह कर्म रोज रोज करने के लिए कहा गया, देव पूजा, गुरुपास्ति, शास्त्र स्वाध्याय, संयम, तप और त्याग, सब जानते हैं। 24 घंटे तीन पुरुषार्थों के लिए शावक के लिए उल्लेख किया गया है। चौथा मोक्ष पुरुषार्थ तो पूरी तरह से मुनि जन निर्वाह करते हैं, लेकिन उसी मोक्ष पुरुषार्थ के लिए गृहस्थ क्या करे, तीन पुरुषार्थ करता है, धर्म पूर्वक अर्थ पुरुषार्थ करता है, धर्म पूर्वक काम पुरुषार्थ करता है, अपने संसार के सारे काम धर्म पूर्वक करता है, आजीविका कमाता है तो धर्म पूर्वक नीति न्याय पूर्वक, ये तीन पुरुषार्थ हैं भैया। अपन तीन पुरुषार्थ में देखें कि 24 घंटे में कितना कितना समय एक पुरुषार्थ के लिए दिया जा सकता है, देना चाहिए। बहुत आसान सा है, 8-8 घंटे एक पुरुषार्थ के लिए पढ़ेंगे। वैसे तो धर्म पूर्वक ही मैं अर्थ पुरुषार्थ करूंगा, तो गद्दी पर अगर मैं धर्म का पालन कर रहा हूं तो वो धर्म पुरुषार्थ ही चल रहा है। अगर मैं संसार के कार्यों को धर्म बुद्धि से ठीक ढंग से जैसा नीति न्याय पूर्वक उल्लेख किया है, असी मसी कृषि विद्या शिल्प और वाणिज्य का अहिंसा का अगर उपयोग करता हूं तो मैं अपने धर्म को नहीं भूलता हूं, तो एक तरह से मैं अपने धर्म की स्मृति रख करके और धर्म पुरुषार्थी कर रहा हूं अपने मुक्ति के लिए मोक्ष के लिए। लेकिन फिर भी अगर हम अपने जीवन में झांक कर देखें तो 8 घंटे धर्म पुरुषार्थ के लिए, धर्म के कार्य करने के लिए, 8 घंटे अपने गृहस्थी को चलाने के लिए, आजीविका के लिए अर्थ पुरुषार्थ करने के लिए, और 8 घंटे सोने खाने पीने और संसार के कार्यों को करने के लिए जो अत्यंत आवश्यक हैं, 8 घंटे मिले हुए हैं। लेकिन मिल पाता क्या अपने को धर्म कार्य करने के लिए 8 घंटे? अरे भैया 24 घंटा में से आधा ही घंटा मिल जाए तो भी बहुत है, 8 घंटा नहीं मिले तो। लेकिन अपन 8 घंटे भी नहीं निकाल पाते, होना चाहिए था कि मेरे जीवन में मैं धर्म कार्य करने के लिए 8 घंटे निकालूं। ऐसा नहीं है कि मैं 24 घंटे ही आजीविका के लिए विचार करता रहूं, वो तो रौद्र ध्यान हो जाएगा। विषयों के संरक्षण में ही मैं लगा हूं, पंचेंद्री और मन के विषयों को मैं कैसे प्राप्त करूं इसकी प्लानिंग कर रहा हूं, कैसे अर्जन करूं, अर्जन हो गया तो कैसे उनकी सुरक्षा करूं और इसको बढ़ाऊं कैसे, अर्जन संरक्षण और संवर्धन इन तीनों में ही मन को लगाए रखता हूं। निरंतर अर्थ पुरुषार्थ ही 24 घंटे करता हूं, मैं अपने धर्म कार्यों के लिए थोड़ा समय निकालूं, ऐसा विवेक अपने आप व्यक्ति के भीतर जागृत होना चाहिए। जिसकी दृष्टि निर्मल है, जिसे आत्मज्ञान हुआ है, वो तो अवश्य अपने जीवन में इस तरह से भावना उत्पन्न करेगा, हो ही जाएगी उसके भीतर भावना उत्पन्न। और फिर जब 8 घंटे मेरे लिए धर्म कार्य करने को है तो कौन से कार्य करूं मैं? जिनेंद्र भगवान की पूजा, गुरुजनों की सेवा, शास्त्र का स्वाध्याय, संयम तप और त्याग, ये 6 कर्म। अगर ये ज्यादा लगते हैं तो चौव्याणम साव्याणम धम्मो, वीरसेन स्वामी धवला जी में लिखते हैं कि कम से कम 4 बातों का पालन तो एक गृहस्थ करे। पूजा, शील, उपवास और नंबर 4 भूल रहा हूं, दान, पूजा, शील, उपवास, दानम, पूजा, शील, उपवासो, चहुव्याणम साव्याणम धम्मो, दान, पूजा और शील, उपवास, ये 4 बातें तो कम से कम शावक इनका ध्यान रखे। सो अपन रखते भी हैं, दान तो अपन खूब करते हैं लाखों रुपए का, लेकिन क्या विचार करें अपन कि वास्तव में गदगद होकर के बिना किसी अहंकार के, बिना संकलेश के, अपने आत्म कल्याण के लिए मैंने कभी अपने परिग्रह से आशक्ति छोड़ करके दूसरे के उपकार के लिए अपनी धन राशि का विसर्जन किया है? वास्तव में ऐसे दान के लिए तो पूरा जीवन लग जाए, तब अपन इस दान में निष्णात हो पाएंगे। जिसके पास जो है, सबसे श्रेष्ठ दान तो रत्नत्रय को माना गया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इसका ही दान मुनिजन देते हैं, सबसे श्रेष्ठ दान है। विनोबा कहते थे कि अगर दान देना है तो दूसरे व्यक्ति को रोटी कपड़ा इत्यादि देने का नाम दान नहीं है, आप उसे आत्मनिर्भर बनाएं, उसके अंदर नैतिक और चारित्रिक दृढ़ता उत्पन्न करें, वही उसकी सेवा है, वही उसके लिए दान है। आज के समय में तो इस तरह के दान की प्रक्रिया अपने जीवन में आ ही नहीं पाती, लाना चाहिए भैया कि हम भी ऐसा दान करें, हम भी ठाठ बाट से भगवान की पूजा करें, अपने परिणाम विशुद्ध करने के लिए, दिखाने के लिए नहीं कि मैं पूजा ऐसे कर रहा हूं। शील का पालन करें, अपनी आंख खराब ना करें, चाहे जिसको देख करके, यही शील है और क्या है। मेरा स्वभाव तो वीतरागता का है, दुर्भावना का नहीं है, सद्भावना का है, सो प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना रखूं, सबके भले के बारे में विचार करूं, किसी के बारे में मेरे मन में विकार भाव उत्पन्न ना हो, यह शील है। और जब मेरी सामर्थ्य हो मैं चारों प्रकार के भोजन का त्याग करने के लिए भी मन बनाऊं, अपने आत्मा के निकट रहने का विचार करूं, अपनी कषायों को, चारों कषायों को जीतने का प्रयास करके और उपवास धारण करूं। वास्तव में तो उपवास तब होगा, ये चारों चीजें भी नहीं बनती हैं अगर तो आचार्य भगवंतों ने और आसान कह दिया, भैया इतने कर लो दान और पूजा, यही श्रावक के लिए पर्याप्त है। चार में से भी दो कर दिए, छह में से चार, चार में से दो, कि करो तो कछु तो करो। और एक चीज अगर करना हो तो एक पर भी आ गए आचार्य महाराज, कहते कि भाई साधु समता रखे और श्रावक संतोष रखे और जीवन जिए, हो गया काम। एक शब्द में श्रावक को पूरे जीवन भर क्या करना है, संतोष धारण करना है, सब चीजें सारे व्रत अच्छे से हो गए। और 28 मूल गुण के पालन करने के लिए सबसे बड़ा समता भाव, महीनों उपवास करना, महीनों मौन धारण करना, महीनों जंगल में जाकर के तपस्या करना, आचार्य कहते हैं कि ये सब कम है समता के सामने। हमारे आचार्य महाराज तो हमेशा कहते हैं कि देखो करोड़पति आदमी हुए तो अपने करोड़ रुपए रोज रोज नहीं गिनता, सिर्फ अकेला एक बार दिन में चाबी के ऊपर हाथ रख लेता कि चाबी सुरक्षित है तो तालो, कोई नहीं खोलो और रुपया सब धरे है। ऐसे ही कितने भी व्रत नियम संयम हो मुझे उनको देखने की आवश्यकता नहीं, पहले मुझे तो पहले अपने समता और संतोष भाव अगर सुरक्षित हैं तो मेरे सारे व्रत सुरक्षित हैं। और अगर मैंने श्रावक ने अगर अपना संतोष भाव सुरक्षित नहीं रखा और साधु ने अपना समता भाव सुरक्षित नहीं किया तो सारे व्रत नियम अपन ने पालन किए लेकिन उनसे अपने जीवन को उतना आनंद और उतनी कर्मों की निद्रा नहीं होगी जितना कि समता और संतोष भाव रखने से। वैसे तो इतना ही पर्याप्त है लेकिन अपन विचार कर लें कि जब छह बातें कही गई हैं तो हम कोशिश करें उन छहों को दिन भर में क्रियाओं को पूरा करने की। कैसे? भावों के साथ। भगवान जिनेंद्र की पूजा करना सबसे पहला काम, जब आंख खुली सवेरे संसार बाद में देखूंगा, सबसे पहले अपने वीतराग स्वरूप को देख करके तो आऊं मंदिर में जिनेंद्र भगवान की पूजा के ठाट बाट से करके और फिर मैं संसार शुरू करूंगा। संसार बाद में, दुकान बाद में खुलेगी, पहले भगवान के दर्शन और उनकी पूजन। ये भाव अपने भीतर उत्पन्न हो तब कहलाएगी कि देव पूजा। गुरुजनों के समीप उनकी सेवा करने का भाव, उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि 24 घंटे उनके पास रहे आए अपन। गुरु पास्ती का मतलब गुरु के निकट ही बैठे रहे तो भैया उपद्रव और हो जाए ना, अपना काम हो पाएगा गृहस्थी का ना, वो अपना धर्म ध्यान कर पाएंगे तो क्या अर्थ है फिर गुरु पास्ती का। मैं जब अपने घर गृहस्थी के काम करूं तो गुरु मेरे हमेशा निकट रहे, मन में हृदय में उनके प्रति श्रद्धा भाव बना रहे। जब मैं दुकान पर बेईमानी करने लगूं तो मुझे फौरन स्मरण करवा के हाथ पकड़ ले कि क्या कर रहे हो। जब मैं किसी के साथ धोखा करने लगूं तब कोई मेरा हाथ पकड़ ले वो कौन है, वो मेरे गुरु हैं जिनको मैंने माना, जिनको मैं अपने निकट हमेशा रखता हूं, जो मुझे गलत करने से रोक लेते हैं, ये गुरु पास्ती है। शास्त्र का स्वाध्याय अपन रोज करें, इसका अर्थ क्या है? अकेले शास्त्र बांच लेना, उससे भी ऊंचे उठे अपन, शास्त्र में लिखी हुई बातों को अपने जीवन में अंगीकार करने के लिए रोज रोज प्रयत्न करेंगे। जैसे कि महाराज युधिष्ठिर ने 6 महीने के बाद अपने गुरुजी से कहा था कि आज पाठ याद हो गया कि क्रोध नहीं करना चाहिए, जब उनने पिटाई करी और उनको गुस्सा नहीं आया पिटने के बाद भी, तो उन्होंने कहा कि आज मुझे पाठ याद हो गया, 6 महीने तक तो मुझे याद नहीं हुआ था कि क्रोध नहीं करना चाहिए। इतना सा पाठ 6 महीने लग गए याद करने में। अरे भाई, वर्षों लग सकते हैं, कंठस्थ करना अलग बात है, लेकिन उसके अनुरूप आचरण भी बन जाए। शास्त्र का स्वाध्याय तब सार्थक होगा। संयम और तप, इन दोनों को अंगीकार करने से पहले अपन को भय लगता है कि भैया अपने बस को नहीं है, कौन बंधे। संयम को अपन बंधन मानते हैं, तप को भी बंधन मानते हैं, दोनों बड़ी कठिन चीजें। ये तो महाराज जी के काम है, हमारे थोड़ी हैं गृहस्थी में, हम तो गृहस्थ हैं, अज्ञानी है महाराज, क्या करें हम जी। बड़ा सीधा हिसाब है, दो चीजें हैं लोगों के पास, एक थी पहले, अब दो हो गई जब से हम आए, कछु भी कर ले हैं, और फिर बाद में कहें कि का भैया है सो काय करो, हमसे पूछ लेते कि ले महाराज आपको डर लगा था जी, बढ़िया सबसे उपाय कि ने पूछने पड़ी ने कछु, अकेली जय कह देने बाद में कि आपसे डर लगा थे, इसे हमने आपसे नहीं पूछी। और अगर ज्यादा कुछ कहेंगे आप तो कहेंगे क्या करें महाराज, गलती हो गई, क्षमा करो, अज्ञानी है हम। अरे भैया, ऐसे अज्ञान से तो संसार ही बढ़ने वाला है, विचार तो करो। मैं सिर्फ अज्ञानी कहकर के अपने आप को बचना चाहता हूं, मैंने क्यों नहीं ज्ञान प्राप्त किया, मैं तो उस पर्याय को प्राप्त कर चुका हूं जो कि आत्मज्ञान पूर्वक अपने कल्याण के योग है। वैसी पर्याय को प्राप्त करके कि मैं ऐसा रोना रोऊं अगर कि मैं अज्ञानी हूं, नहीं भैया, हम ज्ञान प्राप्त करें जिससे कि हमारा कल्याण हो। संयम और तप दोनों बहुत कठिन चीजें नहीं है। विनोबा भावे दोनों के बारे में बहुत आसान सी गृहस्थ के लिए प्रक्रिया बताते हैं, जो आचार्य भगवंतों ने कही है उसे ही उन्होंने आसान शब्दों में कह दिया कि संयम का अर्थ क्या है, अपनी इच्छाओं का नियंत्रण, और तप का अर्थ क्या है, अपनी इच्छाओं को जीत लेना। इतना ही तो है जैसा आचार्य भगवंतों ने कहा, सीधा सा उदाहरण दे दिया कि आज तो मेरा अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करने का मन है, दिन भर में 10 जोड़ी कपड़े पहनता हूं, सुर लेकिन आज तो नियंत्रित रूप से रहूंगा, मैं तो 4 ही बदलूंगा, 4 से ज्यादा उपयोग नहीं करूंगा वस्त्र, क्योंकि जितने उपयोग करूंगा उतने धोने पड़ेंगे, उतना आरंभ सारंभ होगा। उस सब से बचने के लिए मैंने अपनी इच्छाओं को रोक लिया कि नहीं, 4 ही से काम चलाऊंगा। आज मैं हो सकता है कि 4 चम्मच डाल करके और 1 गिलास दूध पीता हूं तो मैं दूध भी नहीं छोड़ पाऊंगा और शक्कर भी नहीं छोड़ पाऊंगा, तो क्या करूं, मैं 4 में से 2 तो कर सकता हूं, मैं 2 चम्मच डाल के ही आज दूध पीऊंगा, 4 पीता था पर 2, मेरा नियंत्रण है अपनी इच्छाओं पर, ये हो गया संयम। कोई बहुत कठिन है क्या? और तपस्या, तपस्या तो आप घर में रह करके भी कर सकते, अपनी इच्छाओं को निरोध करके, आज तो मेरा मन है कि आज तो फीका ही दूध पी लूंगा, आज तो मेरा रस परित्याग है, आज तो मैं शक्कर नहीं लूंगा, शाम को देखूंगा, सुबह के भोजन में नहीं लूंगा, ये क्या कमती है क्या त्याग, ये तप क्या कमती है, मैंने अपनी इच्छाओं को जीत लिया। इस तरह एक गृहस्थी में रह करके भी अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए ये 6 बातें शावक अंगीकार कर सकता है। त्याग शावक के लिए तो क्या करेगा त्याग, त्याग तो घटित होता है महाव्रतों के साथ ही, पर फिर भी देह संयम धारण करता है इसलिए उसे त्यागी कह देते, अपन कहते नहीं कि त्यागी जी आए हैं, लेकिन वास्तव में गृहस्थ के लिए त्याग दान के रूप में लिखा हुआ है। वो स्वयं अपने कल्याण के लिए और साथ में ध्यान रखेगा कि दूसरे का भी कल्याण हो, मैं ऐसी त्याग करूं, मैं ऐसी चीज दूं जिससे कि मेरा भी कल्याण, मेरी आसक्ति भी दूर हो और दूसरे का उपकार भी हो। उसके लिए वो निरंतर सुबह से शाम तक भावना बनाएगा, भैया जिसके पास नहीं है वो क्या देगा, कम से कम दो मीठे शब्द प्यार के तो दे सकते हैं, और कछु नहीं है तो। किसी के पास कुछ भी नहीं है देने के लोग योग, लेकिन देने की भावना तो हो सकती कि मेरे पास होता तो देता। एक चोर घुस गया था एक गरीब आदमी के घर, धोखे से वो को पता ली कि इनके पास हुई है कछु, रात में घुस गया, उसने सब ढूंढा ढाड़ा, कुछ भी नहीं मिला। अब हथोई ने कछु से कहा मिलते, गलती से घुस गया वो जो मकान मालिक था गरीब, उसकी नींद खुल गई, उसने देखा कि चोर घुसा है, अब उसको मिल है का है कछु है ही नहीं है। बड़ा चिंतित मालिक चिंतित है कि कच्चू नहीं है, काले के जे है वो। अब बताओ ऐसा अपन चिंतित होते हैं? नहीं चिंतित होते, इसलिए चिंतित होते हैं कि फोन हो तो कहूं तो हम पुलिस को खबर देते थे चोर घुसो है। उसकी भावना ये हो रही है, इस बात की चिंता है कि मेरे घर आ तो गया है लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे, वो चुपचाप उठा और कहा कि भाई क्षमा करना,
तुम थोड़ा सा पहले मुझे इशारा बोलो
लगेगा। एक बार का याद है मुझे कि किसी ने मुझे 10 रुपए दिए थे, देखना जरा अलमारी के नीचे कागज के नीचे दबे हुई है 10, सुबह ले लो तुम। अब बताओ चोर को बता रहा, तो वाकई में निकाल करके जब 10 रुपए दिए तो चोर ने कहा कि मैंने बहुत लोगों के यहां चोरी की लेकिन वो सब चोर थे, तुम तो साहूकार हो, साहूकार ही दे सकता दूसरे को, चोर नहीं दे सकता। कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन चोर ने यही कहा कि मैंने आज तक चोरी की थी, उसमें से कोई साहूकार नहीं मिला, ये पहले तुम साहूकार मिले जो देने तत्पर हो। और जब जाने लगा सुकेन लगे कि देखो ठंड बहुत है, कैसे जे हो तुम, ठंड बहुत लग रात में 12 बजे रात को तो बहुत ठंड लगेगी, ऐसा करो हम तो कमरा में ही हैं, वो घरे ही हैंगे, हमारा कंबल जो हम ओढ़े हैं वो तुम ओढ़ के चले जाओ। सो उसको कंबल दे दिया। चोर तो बड़ा गदगद कि भाई ऐसी तो हमने देखा नहीं किसी को, 10 रुपया दो कंबल दे दो कि ठंड नहीं लगे। वो जब घर पहुंचा तो उसकी मां से उसने कहा कि ऐसी घटना हो गई, तो कहने लगे तुमने सही व्यक्ति के यहां पर चोरी नहीं की, जाओ उनके 10 रुपए वापस लौटा के आओ और उनका कंबल दे करके आओ, वो तो धर्मात्मा है, पूज्य पुरुष है, उनके पैर छुओ और हो सके तो अपने भीतर चोरी को त्याग करने का भाव उत्पन्न करो। वो वापस लौटा 10 रुपए लेकर के और कंबल लेकर के, और उसने दरवाजे खुले थे तो खोल करके जैसे ही देखा उस मालिक को, तो वो मालिक अपने घर की खिड़की पर बैठा हुआ क्या कह रहा था कि देखो तो आज मेरे घर में कोई आया और मेरे पास देने के लिए कुछ अच्छा नहीं था, और चंद्रमा की तरफ इशारा कर रहा कि मेरे घर अगर चंद्रमा होता तो मैं तो आज उसे दे देता। कैसी भावना, देना तो बाद की चीज है लेकिन मैं तो सिर्फ भावना बनाऊं दूसरे के उपकार की, दूसरे को कुछ देने की, अपने आसक्ति को कम करने की, दूसरे को देने के माध्यम से मेरी आसक्ति कम होती है, इसलिए देना सार्थक है। किसी व्यक्ति ने लिखा कि बहुत अच्छा है, दूसरे को भूख लगती है नहीं तो अपन को दान ही नहीं दे पाते, अपन सत्कार ही नहीं कर पाते अतिथि सत्कार, अगर दूसरे को भूख नहीं लगती तो ये अच्छा हुआ कि दूसरे को भूख लगती है, स्वयं अतिथि सत्कार का मौका मिलता है, ये सोचकर के अतिथि का सत्कार करें, चले आए उनको जब चाहे जब चले आते हैं, हमें कितना कहां तक देवे हम, ऐसा नहीं, अच्छा हुआ जो आपके लिए आवश्यक हो गया नहीं तो आप मेरे से कहां मांगते, मैं अपनी आसक्ति कैसे कम कर पाता। बनारसी दास जी के बारे में है कि थोड़ा सा परिग्रह रखते थे और उसमें भी चोर आया था, सो सब सामान बांध लिया जो जग रहे थे उनको मानन दो, और फिर जब जान लगो सुबह पुटरिया बड़ी हो गई, उठा तो नहीं बनी, सो इनने मुंह पे धरवा दी कि ले तो जा। कलाकार आए कि हम अपने को इस योग्य समझते हैं कि आपके लिए और हम चित्र बना पाएंगे जो आपको पसंद आएगा। एक कलाकार ने कहा कि इतना इतना रंग रोगन चाहिए, ये ब्रश चाहिए और कैनवास। तो राजा ने कहा कि दीवाल है, दीवाल पर ही चित्र बनाओ। उसने कहा ठीक है, कैनवास तो हो गया पर रंग रोगन और ब्रश तो लाओ। अरेंजमेंट कर दिया रंग रोगन का भी और ब्रश वगैरह का, तो चित्र शुरू हो गया। दूसरे से पूछा तुम्हें क्या चाहिए, कहने हमें कछु नहीं चाहिए, सिर्फ इतना करो कि जो दीवार इसको दी है बनाने को चित्र, उसके सामने वाली मुझे दे दो और दोनों के बीच में एक पर्दा लगा दो। मुझे ना ब्रश चाहिए ना रंग चाहिए, लेकिन 6 महीने चाहिए, जितने उसने दिए इतने ही मुझे चाहिए। अब बड़ा राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिना रंग रोगन के बिना ब्रश के और ये कैसे बनाएगा अपना चित्र। अब ठीक है, थोड़े दिमाग ऐसे ही रहते कलाकारों को, उनने सोची चलो बना दो जैसा होगा तो है कि नहीं। अब 6 महीने हो गए रंग रोगन से और ब्रश से चित्र बनाने वाले चित्रकार ने कहा कि चित्र पूरा हो गया राजन, आप पधारे महल में और मेरे चित्र का अवलोकन करें। राजा ने देखा कि बहुत बढ़िया चित्र बनाया है, बड़ी प्रशंसा की राजा ने। दूसरे वाले के पास पहुंचे, पर्दे के उस तरफ भी उसका चित्र था, कहले भाई तुम्हारा चित्र, कहले राजा साहब तैयार है, आप पर्दा अलग करवा दो और सामने की दीवार पर बहुत बढ़िया चित्र है, आप देखें अवलोकन करें। राजा ने पर्दा हटवाया और सामने की दीवार पर देखा तो ये तो 2 डायमेंशन था, वो तो 3 डायमेंशनल था, उसमें राजा साहब भी दिख रहे थे। बड़ा आश्चर्य हुआ राजा को कि बिल्कुल ज्यों कहते हो वही बिना रंग रोगन का बिना ब्रश का चित्र और बहुत सुंदर, और उसमें तो मैं भी बन गया। बड़ा आश्चर्य हुआ उसको कि चित्रकार तुमने ये चित्र कैसे बनाया, क्या किया तुमने। तो उसने कहा कि मुझे ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ा, सिर्फ आपने जो दीवार मुझे चित्र बनाने दी थी उसे ही घिस घिस करके इतना चमकदार बनाया, इतना निर्मल बनाया कि वो जो चित्र बनाए वो चित्र इस पर भी आ जाए। भैया मैं धार्मिक क्रियाएं ऐसी करूं कि उन धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से घिस घिस करके मेरा चित्र भी, मेरी दीवार भी निर्मल हो जाए, मेरी आत्मा भी निर्मल हो जाए, इसके लिए मैं सारी धार्मिक क्रियाएं करूं और पूरी उज्ज्वलता का विचार रख के उज्ज्वलता से ही करूं। तो अपनी ये सारी धार्मिक क्रियाएं जो आचार्य भगवंतों ने हमें कर्तव्य की तरह अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कही है वो सार्थक होंगी। हम भावना भाए प्रयास करें कि हम भी इसी तरह चित्त की निर्मलता प्राप्त करने के लिए निर्मल चित्त से इन सब धार्मिक क्रियाओं को करें। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है।
जग जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हूँ,
अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता
हूँ, शाता सन्नाटा में चारे चरते हूँ,
तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो,
करते तप से नदी तट पर तर तर वर्षा की झड़ियों में,
समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में,
अंतर ज्वाला मरते वाणी मानो झड़ते हो।
खिल जावे अंतर की कलियां।
तुम सालाने क्या कोई हो जग को दे दी जग की निधियां।
दिन रात लुटाया करते वो शमशम की अविनाश्वर मणियां।
हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम।
हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम।
उदक चंदन कंदल पुष्प कैश्चर सुदीप सुधूप फलार्ग कई।
धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे मुनि राज मगम यज।
ओम रेम परम पूज्य आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज संगस्त मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज मुनि श्री भूमि सागर जी महाराज चरणों में अर्घ्य अर्पित स्वाहा।
विद्या तम नाश वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो आपा पर भास वेखो भानु सेवकानी है।
क्षमा द्रव्य जान वेखो बंदे विभान वेखो स्वपद पहचान वे को परम प्रमाणी है।
अनुभवताए वे को जीवों के जताए वे को काबू न सताए वे को भव्य उरानी है।
जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को
वाणी के जानते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो दो। हे दिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरा शरणागे सो पावे सुख तें।